नमस्कार, मैं अमिताभ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है नई धारा एकल। इस कार्यक्रम में हम हर बार किसी प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री से उसकी पसंद की रचना का एक अंश सुनते हैं। हमारी आज की कलाकार हैं सीमा पाहवा। सीमा पाहवा की माताजी श्रीमती सरोज भार्गव दिल्ली रंगमंच की एक बहुत ही बेहतरीन और वरिष्ठ अभिनेत्री थीं और इसीलिए अभिनय सीमा जी को विरासत मिला। इन्होंने बचपन से ही नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था और दिल्ली के अनेक रंगमंडलों में बतौर अभिनेत्री कार्यरत रहीं। सन 1984 में जब एक नया थिएटर ग्रुप बना संभव, तो सीमा जी उससे जुड़ी और बहुत जल्दी ही उस दल की प्रमुख अभिनेत्री बन गई। आज सीमा जी हम लोगों के लिए मोहन राकेश का बहुत ही चर्चित नाटक जो है आधे अधूरे, उसमें से सावित्री की एक स्पीच लेकर के आई हैं। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय परिवारों की जद्दोजहद, उनकी कुंठाओं, उनकी दबी छुपी इच्छाओं का नाटक है। महेंद्रनाथ और सावित्री पति पत्नी हैं। महेंद्रनाथ अभी शायद कुछ नहीं करता है, सावित्री कमाई से ही घर का खर्च चलता है। सावित्री इस घर का तो बोझ ढो ही रही है और वो जी जान से जुटी हुई है इस टूटते हुए घर को जोड़ने में। साथी में वो तलाश कर रही है अपने किसी एक ऐसे साथी को, एक ऐसे हमदर्द को जिसके साथ शायद वो अपने मन की बात कह सके। नाटक की शुरुआत में जब सावित्री ऑफिस से थकी हारी आती है तो घर में घुसते ही उसकी महेंद्रनाथ से लड़ाई हो जाती है और महेंद्रनाथ गुस्से में घर छोड़ के चला जाता है। सावित्री घर की बाकी समस्याओं से उलझ जाती है और लगभग नाटक के अंत में जब महेंद्रनाथ का दोस्त जुनेजा उसके पास आता है महेंद्रनाथ की पैरवी करने के लिए, तो सावित्री क्या कहती है, चलिए सुनते हैं सीमा पाहवा जी से।
एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच में एक आदमी होता है? यूं तो जो कोई भी आदमी की तरह चलता फिरता है, बात करता है, वो आदमी होता है ना। पर असल में आदमी होने के लिए जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जब से मैंने उसे जाना है, मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया है, और खासतौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लूं, वहां जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय ले लूं। कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहां तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी किसलिए किया, जुनेजा के हामी भरने से। वाह! और उस भरोसे का नतीजा, अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा ही नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी है जुनेजा। जुनेजा सोचता है, जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है वही उसे भी सोचना है, उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी अपने आप में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। मुझे असलियत की बात करने दीजिए। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। और कौन सी जरूरत? अपने अंदर की किसी उस क्या मतलब एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। यानी दूसरों को पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती, पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की एक चीज है वो, जो कुछ वो दूसरों से चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वो सोचते हैं कि उसकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, इस काम के लिए कोई और नहीं जा सकता। हाँ, महेंद्र ना चला जाएगा, इस बोझ को कोई और नहीं ढो सकता। महेंद्र ना ढो लेगा, प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र नाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। अरे महेंद्र नाथ तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा उसका हिस्सा ये दूसरे चौथे तीसरे दर्जे की घटिया चीज है जिससे वो सोचता है कि उसका घर बन रहा है। अच्छा, इसकी वजह मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? और वो मुझे खुश रखने के लिए ये लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, क्या चीज और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप जानते होंगे ना। अरे मत कहिए मुझे महेंद्रनाथ की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार, पत्नी, बीवी, ये बात तो महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या कर लिया, आप लोगों की नजर में आपका ही कुछ आपसे छिल लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं है। अरे महेंद्र अब पहले वाला महेंद्र ही नहीं रह गया है। और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की कि वो वही बना रहे किसी तरह, कोई ये ना कह सके जिससे कि वो पहले वाला महेंद्र नहीं रह गया है। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर दिन रात छटपटाता था, दीवारों से सर पटकता था, बच्चों को पीटता था, बीवी के घुटने तोड़ता था। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी नहीं जमती, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मजा नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र का मुख्य काम है जिंदगी में, और उसका ही नहीं उसके घर वालों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। अरे तुम फला जगह चलने से इंकार कैसे कर सकती हो, फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती, तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज ही नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए, क्यों तुम लोगों के बीच में हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है ना, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है, पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वो ताब में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगता है कि बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूं, मानेगी वो सब की नहीं जो मैं कहता हूं। पर सावित्री फिर भी नहीं चलती, वो सब नहीं मानती, नफरत करती है उस आदमी से, इस आदमी के ऐसा होने से। एक पूरा आदमी चाहती है वो, एक पूरा आदमी अपने लिए। वो गला फाड़ कर ये बात कहती है, कभी इस आदमी को वो आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़क कर अपने आप को इससे अलग कर लेती है। मगर अगर उसकी कोशिश में थोड़ा सा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका गम बनाया जाने लगता है। सावित्री तो महेंद्र नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी ना होकर बिना हांड मांस का पुतला है वो एक बेचारा महेंद्र।
बहुत जबरदस्त पाठ किया सीमा पाहवा जी ने। फिर से उसी प्रोडक्शन की याद आ गई आधे अधूरे की, जो उन्होंने कई साल पहले दिल्ली में श्रीराम सेंटर के बेसमेंट में किया था। उस दौर में उन्होंने कई नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। तो जब उनसे पूछा कि उनके हिसाब से सावित्री का जो ये करेक्टर है, किरदार है आधे अधूरे में, ये क्या महत्व रखता है उस नाटक में और हमारे समाज में, तो उनका जवाब था,
सावित्री इन सारे किरदारों से डेफिनेटली अलग हैं क्योंकि हर किरदार अपने आप में लिखा गया है। सावित्री एक बहुत ही, मुझे लगता है आज भी रेलिवेंट करेक्टर है, इसलिए क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, हम बहुत ज़्यादा प्रतिशत मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, जहाँ पर एक औरत का बाहर निकल के काम करना और उसे उस समाज की सारी चीज़ों से जूझना, जिसमें उसका अपना एक निजी स्ट्रगल भी होता है, जिसमें उसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, या जो भी है आज की अगर युग की बात करूँ जहाँ पर औरत इसलिए लड़ रही है। लेकिन सावित्री इसलिए अलग हो जाती है कि उस वक्त लड़ाई ये नहीं थी कि उसे खुद को क्या बनना है, वो लड़ाई ये थी कि उस पूरे अंक को लेके उसे साथ में चलना है, जिसमें उसका बेटा भी है, जिसमें उसकी बेटी भी है, एक छोटी बेटी भी है, एक पति भी है, और पति के बार बार फेलियर होने से जो एक औरत के ऊपर एक अधूरेपन का जो एहसास है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक ड्रीम होता है आपका, आप जब बचपन से बड़े होते हैं तो आप एक अपने लिए कल्पना करते हैं कि मेरा कैसा घर होगा, वो कल्पना जब भी ज़रा सी भी हिलती है मुझे लगता है वो हमारे अंदर एक विवाद पैदा करती है, और सावित्री उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने ज़िंदगी भर एक भटकाव में निकाल दिया, कभी भी उसे एक पूरा संसार, एक पूरी दुनिया नहीं मिल पाई। सिर्फ पुरुष से मैं नहीं लूँगी कि सिर्फ पुरुष की तलाश थी उसे अपने घर की तलाश थी, जिसे घर कंप्लीट करने में जो उसके सहायक हो सकते थे, चाहे वो फाइनेंशियली होते, इमोशनली होते या फिजिकली भी होते, लेकिन वो पुरुष उसे एकमात्र नहीं मिल पाया, और इसीलिए शायद उसका भटकाव कंटिन्यू था, जिसमें अपने घर को बनाने की भी इच्छाएं रख रही थी वो, ऐसा नहीं था, नहीं तो शायद वो पहले ही घर छोड़ के भाग जाती, पर वो घर बनाना चाहती थी और उन सारी चीज़ों से जूझती हुई एक औरत जो छटपटा रही है अपने फेलियर से, उस घर के फेलियर से, उस पति के फेलियर से, इस पूरी सोसाइटी के फेलियर से। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था और जो मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वो अलग बात है कि मैं उस वक्त बहुत कम उम्र में थी जब मैंने सावित्री किया था, लेकिन आज भी उन परिस्थितियों को देखती हूँ पीछे मुड़ के तो लगता है कि जैसे आज भी समाज में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बदली हैं, वो प्रॉब्लम तो आज भी एग्जिस्ट करती है।
तो साथियों, ये था हमारा आज का एकल पाठ, और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे एक बेहतरीन अभिनेता जाकिर हुसैन जी से। और हाँ, मुझे आशा है कि आप लोग नई धारा के YouTube चैनल को देख रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।